रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पश्चिमी और स्थानीय वायु के प्रभाव के कारण अगले तीन दिनों तक है बारिश की संभावना। सावधानी अपनाने का जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुरोध। हुमला के तिलगांव में हिमताल फूटने के कारण दुष्प्रभावित लोगों का तत्काल उद्धार करने और राहत मुहैया कराने का गृह मंत्रालय का निर्णय। राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केंद्र के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक सुनील पौडेल सहित पांच लोगों के विरुद्ध 5,79,00,000 रूपये के भ्रष्टाचार के मामले में विशेष अदालत में मुकदमा हुआ दर्ज। प्रतिनिधि सभा से जलस्रोत विधेयक 2081 बहुमत से हुआ पारित। और इसराइल ने गजा में 2 महीने के बाद खाद्यान्न आपूर्ति के लिए दी स्वीकृति। अब समाचार विस्तार से। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अंतर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने कहा है कि पश्चिमी और स्थानीय वायु का प्रभाव कायम होने के कारण अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। अभी भी देश के ज्यादातर हिस्सों में आंशिक से सामान्य बदली है और हल्की से भारी बारिश होने के साथ ही तेज हवा चलने और बिजली गिरने की स्थिति है। महाशाखा ने सावधानी अपनाने का सभी से अनुरोध भी किया है। महाशाखा के मौसमविद संजीव अधिकारी के मुताबिक मौजूदा प्री मॉनसून के समय में बिजली गिरने के साथ बारिश हुआ करती है। गृह मंत्रालय ने हुमला स्थित नामखा गांवपालिका वार्ड नंबर 6 तिलगांव में हिमताल फूटने से दुष्प्रभावित हुए लोगों का तत्काल उद्धार कर राहत मुहैया कराने का निर्णय किया है। गृहमंत्री रमेश लेखक के संयोजकत्व में आज गृह मंत्रालय में बुलाई गई सरोकार वालों की बैठक ने तत्काल राहत सामग्री मुहैया कराने और उद्धार करने का निर्णय किया। बैठक में सहभागी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कमल राम जोशी ने बताया कि भूस्खलन आने के कारण के संबंध में अध्ययन टोली गठन करने का निर्णय भी बैठक ने किया है। बता दें कि आज की प्रतिनिधि सभा की बैठक में नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद छिरिंग डमडुल लामा भोटे ने तिलगांव के बाशिंदों को जोखिम में बताते हुए तत्काल उद्धार और सहायता के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने सूचना प्रविधि केंद्र के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक सुनील पौडेल सहित 5 लोगों के खिलाफ 5,79,00,000 रूपये के भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। आर्थिक वर्ष 2075-76 में खरीदे गए मुख्य प्रावधिक उपकरणों का मूल्य ऑनलाइन स्रोत में प्राप्त हालिया मूल्य से अधिक पाया गया है, इसीलिए उपकरणों की खरीदारी के काम में संलिप्त लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। ये बात आयोग के प्रवक्ता राजेंद्र कुमार पौडेल ने बताई। इस मामले में पौडेल समेत केंद्र के तत्कालीन सहायक निदेशक रमेश पोखरेल, कंप्यूटर इंजीनियर रामशरण गायक, तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, उपकरण विक्रेता कंपनी मैक्स इंटरनेशनल प्राली और कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अकबर हुसैन के खिलाफ क्लेम्ड अमाउंट 5,79,00,000 रूपये कायम कर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है, ये जानकारी आयोग ने दी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने जलस्रोत विधेयक 2081 बहुमत से पारित किया है। बैठक में ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का द्वारा प्रस्तुत जलस्रोत विधेयक 2081 को सभा की बहुमत ने पारित किया। विधेयक के ऊपर विमर्श के दौरान उठाए गए सवालों के जवाब देते हुए मंत्री खड़का ने कहा कि जल के उपयोग और संरक्षण के लिए कानूनी व्यवस्था करने के लिए विधेयक महत्वपूर्ण साबित होगा। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने कुछ नेपाल आयनों में संशोधन करने के लिए बने विधेयक 2080 के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। इसी तरह बैठक में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने चलचित्र विधेयक 2081 को सभा में पेश किया। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल ने कहा कि यदि किसी परियोजना के समय पर पूरा न होने में किसी पक्ष का स्वार्थ दिखाई दिया तो उसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सांसदों ने हुमला की नामखा गांवपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित गाद सहित आई बाढ़ व भूस्खलन के कारण 19 घर परिवार और 33 लोग फंसे हुए होने का जिक्र करते हुए पीड़ित परिवारों को सुरक्षित वासस्थान और उचित क्षतिपूर्ति देने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक जेठ 7 कते बुधवार 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
भाउजू दर्शन
भाग्यवानी बाबु राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते भाउजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ भाउजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कहा कि एमाले पार्टीगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सुशासन और अखण्डता के लिए काम कर रही है। नेपाल उत्पीड़ित जातीय मुक्ति समाज के सातवें राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कम्युनिस्ट आंदोलन पार्टी और देश को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वार्थ को केन्द्र में रखकर आगे बढ़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने गणतंत्र दिवस 2082 को भव्यता के साथ मनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ओली की अध्यक्षता में मूल समारोह समिति गठित होने के बाद उन्होंने जनस्तर पर दिवस को भव्यता के साथ मनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबार में आज हुई बैठक ने इसी जेठ 14, 15 और 16 गते सभी सार्वजनिक निकायों में दीप प्रज्वलन सहित त्रिदिवसीय रूप में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए केन्द्र, प्रदेश और स्थानीय तीनों तहों की सरकारों और संबंधित निकायों, निजी क्षेत्र, संघ संस्थाओं को समेटकर तहगत उपसमितियों का गठन किया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन को किसी राजनीतिक दल या सरकार के पक्ष में नहीं बल्कि आम जनता के पक्ष में समाचार और कार्यक्रम निर्माण कर लोगों को सुसूचित करना चाहिए। सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसबी नेपाल द्वारा आज काठमांडू में आयोजित रूपांतरण बहस कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नेपाल टेलीविजन और रेडियो नेपाल को देश के विकास तथा समृद्धि सहित राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और धार्मिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक और भाषिक सहिष्णुता को बढ़ाने पर प्रसारण केन्द्रित करने की जरूरत है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल की ओर से गजा में हमास के ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच इसराइल ने गजा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसराइल की ओर से घोषणा की गई कि वो लगभग 3 महीने की नाकाबंदी के बाद गजा में सीमित मात्रा में मानवीय सहायता की अनुमति देगा। खाद्य सुरक्षा पर वैश्विक विशेषज्ञों की ओर से अकाल की चेतावनी दिए जाने के कुछ दिन बाद इसराइल ने इस तरह का कदम उठाया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भुखमरी का संकट गजा में इसराइल के नए सैन्य हमलों को खतरे में डाल सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने 2 मिलियन से अधिक लोगों के क्षेत्र में सीमित मात्रा में भोजन की अनुमति देने के निर्णय को मंजूरी दे दी। हालांकि ये तुरंत स्पष्ट नहीं था कि सहायता गजा में कब या कैसे पहुंचेगी। मानवीय सहायता की देखरेख करने वाले इसराइली सैन्य निकाय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। सहायता कार्यकर्ताओं की आपत्तियों के बावजूद इसराइल एक नई सहायता प्रणाली लागू करने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ये सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि सहायता आतंकियों तक न पहुंचे। इसराइल ने इसी साल 2 मार्च को नाकेबंदी लागू करते हुए गजा में सभी खाद्य, दवा और अन्य आपूर्ति काट दी थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिमी और स्थानीय वायु के प्रभाव के कारण अगले 3 दिनों तक है बारिश की संभावना। सावधानी अपनाने का जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुरोध। हुमला के तेलगांव में हिमताल फूटने के कारण दुष्प्रभावित लोगों का तत्काल उद्धार करने और राहत मुहैया कराने का गृह मंत्रालय का निर्णय। राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केन्द्र के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक सुनील पौडेल सहित 5 लोगों के विरूद्ध 5,79,00,000 रूपये के भ्रष्टाचार के मामले में विशेष अदालत में मुकदमा हुआ दर्ज। प्रतिनिधि सभा से जलस्रोत विधेयक 2081 बहुमत से हुआ पारित और इसराइल ने गजा में 2 महीने के बाद खाद्यान्न आपूर्ति के लिए दी स्वीकृति। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।